नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं भागवत पुराण की कथा वराह अवतार में। दोस्तों, पौराणिक कहानियां सुनने में मिथक या माइथोलॉजिकल तो लगती हैं, पर अपने समय की अनूठी सच्चाई के लिए भी होती हैं। आज हम आपके लिए भागवत पुराण की वो कथा लाए हैं जिसमें विष्णु जी के तीसरे अवतार वाराह अवतार की कहानी है। आपने तो चित्र देखा ही होगा जिसमें एक वाराह रूप ने धरती को अपने दांत पर उठा रखा है और वो धरती को कहीं से निकाल कर ला रहे हैं। इन कथाओं में जो सच्चाई होती है उसमें कई साइंटिफिक फैक्ट्स भी होते हैं। अच्छा जीवन कैसे जीना है, एक अच्छे जीवन में मोटिवेशन कहां से प्राप्त करना है, वो तो हमेशा ही पता चलता है दोस्तों। तो आइए भागवत पुराण की इस कथा को सुनते हैं। ये कथा वहां से आरंभ होती है जब एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकाद ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे। सनकाद ऋषि के बैकुंठ धाम पहुंचने पर भगवान विष्णु के दो पार्षद जय और विजय उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं। सनकादि जी बहुत ही सम्मानित ऋषि थे, पर उनको भीतर जाने से रोक दिया गया। सनकादि ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया, पर दोनों द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। सनकादि ऋषि क्रोध में आ गए और दोनों को पाप योनि यानी के धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप तो दे दिया था। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु ने भी सनकाद ऋषि को समझाया, पर अब क्या होता, अब कुछ नहीं हो सकता था। बहुत विमर्श के बाद ये बात सामने आई कि इन दोनों जय और विजय को धरती पर दैत्य योनि में 3 जन्म लेने होंगे और जब स्वयं विष्णु जी के हाथों इनका संहार होगा तब ये इस श्राप से मुक्त होंगे। तो इस तरह जय विजय का जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ। आज की हमारी कहानी का फोकस हिरण्याक्ष है, तो आइए आज हम उसी की बात करेंगे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का परम भक्त था। कई वर्षों तक उनकी पूजा करके उसने ये वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देव, मनुष्य, असुर, देवता, जीव जंतु उसे नहीं मार सकेगा। बड़ा ही टेक्निकल वरदान मांगा था हिरण्याक्ष ने। उसने उन सभी जीव जंतुओं का डिटेल में नाम लिया जिनसे वो मरना नहीं चाहता था। वरदान मिलने के बाद हिरण्याक्ष को अपनी अमरता पर भरोसा हो गया और इसके साथ ही उसके अत्याचार भी शुरू हो गए। देवताओं पर, इंद्र के महल पर भयंकर आक्रमण आरंभ हो गए। उसके अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने धरती पर शरण ली। उनके स्वर्ग लोक पर तो हिरण्याक्ष का कब्जा हो चुका था। जब हिरण्याक्ष को यह बात पता चली तो उसने धरती को समुद्र में डुबो दिया। कई जगहों पर ऐसा भी कहा गया है कि हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल या पाताल लोक में डुबो दिया। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था। धरती को तो किसी भी हालत में बचाना ही था। ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि उन्होंने स्वयं ही हिरण्याक्ष को वरदान दिया था, तो अब क्या किया जा सकता है। हो ना हो अब उन्हें विष्णु जी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ऐसा उन्होंने सोचा ही था कि तभी उनकी नाक से एक छोटा सा प्राणी बाहर गिरा। ये प्राणी एक सुअर था यानी कि वाराह। फिर वो प्राणी अपने आप ही बड़ा होने लगा और उसने एक विशाल आकार ले लिया। ये और कोई नहीं, स्वयं विष्णु ही थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया कि वो धरती को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश करेंगे और उसे बचा के लाएंगे। अब जरा आप उस वरदान के बारे में सोचिए जो हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से मांगा था। उसने कई जंतुओं को मेंशन किया था, पर सुअर का नाम लेना वो भूल गया था, या उसे लगा कि एक सुअर इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उसे वो मार सके। विष्णु जी वाराह के रूप में धरती को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और धरती को खोजने लगते हैं। दूसरी ओर हिरण्याक्ष ने समुद्र के देवता वरुण जी को चैलेंज कर दिया था कि वो उससे युद्ध करें। वरुण जी ने सच्चाई से कह दिया कि वो उससे युद्ध नहीं कर सकते, पर हां हिरण्याक्ष को विष्णु से युद्ध करना चाहिए जो उन्हें टक्कर दे सकते हैं। वहीं विष्णु जी ने समुद्र में धरती को खोज लिया था और वो उसे अपनी थूथनी पर उठाए समुद्र से बाहर ले जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने उनको देख लिया और चैलेंज करके युद्ध करने को कहने लगा। विष्णु जी रुकते नहीं, वो समुद्र की सतह की ओर बढ़ते ही जाते हैं। हिरण्याक्ष भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। इस रेस में विष्णु जी रुकते नहीं और समुद्र तल से ऊपर आकर के पहले तो धरती को उसकी धुरी पर स्थापित करते हैं और उसके बाद वो मुड़कर हिरण्याक्ष की ओर देखते हैं। हिरण्याक्ष विष्णु पर अपनी गदा फेंकता है और एक भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध के अंत में हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है और धरती फिर से अपनी धुरी पर घूमते हुए सुरक्षित हो जाती है। दोस्तों, वेस्टर्न स्कॉलर्स से प्रभावित लोग भागवत पुराण को 1000 साल पुराना बताते हैं। हमारे ही कई विद्वान इसे 3000 साल पुराना कहते हैं। जो भी हो, उस समय के ऋषि मुनि कैसे जानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? अगर आप ध्यान दें तो वराह जी ने धरती को उसकी धुरी पर स्थापित किया था। इस कथा में कहीं उस समय की बात तो नहीं हो रही जब धरती जलमग्न थी और धरती पर रह रहे मैमल्स और दूसरे प्राणियों के लिए खतरा पैदा हो गया था, या धरती पर कोई ऐसी विपदा आई थी कि सारे जंतुओं के लिए बचना कठिन हो गया था? ये कहना अभी कठिन है। रिसर्च के बाद सब समझ में आ जाएगा कि इस कथा की सच्चाई कितनी साइंटिफिक है। समुद्र से किसी कॉस्मिक ओशन की बात हो रही है या पेरिमोडियल वाटर्स की। पर एक बात है कि जब धरती रसातल या डीप डाउन चली गई थी, तब भगवान विष्णु को स्वयं आकर के इसे बचाना पड़ा था। समय समय पर धरती पर भयंकर विपदाएं आती ही रहती हैं और ऐसे समय में हमें अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। भगवान कुछ न कुछ ऐसा करते ही हैं जिससे पृथ्वी और हम सब की रक्षा और कल्याण होता है। चलिए, इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।